हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सही बात थी, उनके उठने से पहले सभी उठ चुके थे। हम कब से आप दोनों की वेट कर रहे थे, रवनीत ने कहा। घर के बड़ों को छोड़कर घर का कोई भी तैयार नहीं था। सभी ने नाइट सूट पहने गप्पे लगा रहे थे। वंश नोटिस कर रहा था कि उसने सिर्फ गीत की मॉम को ही साड़ी पहने देखा था तस्वीर में, जहाँ कोई भी औरत साड़ी पहने नहीं थी। किसी भी औरत के गले में मंगलसूत्र नहीं था और हल्का सा सिंदूर किसी किसी ने लगाया था। वहाँ सभी एक साइड पर टेबल लगे हुए थे जहाँ पर ब्रेकफास्ट लग रहा था। ब्रेकफास्ट में सैंडविच और आलू के पराठे थे दही के साथ। वेदांत ने उस घर को ध्यान से देखा। तीन मंजिला बहुत बड़ी कोठी थी और आंगन भी बहुत बड़ा था। गाड़ियों के लिए एक साइड पर गैराज बना हुआ था जिसमें कई गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं। उन लोगों का स्टेटस नजर आ रहा था। वंश को देखते ही बड़े दादाजी वंश के पास आकर बैठ गए। वो वंश से बातें करने लगे। इतनी देर में गीत दो प्लेट्स पकड़े हुए वहाँ तक आ गई। वह वंश के लिए सैंडविच और खुद के लिए आलू का पराठा लेकर आई थी। बेटा, ब्रेकफास्ट में अगर कुछ और चाहिए हो तो बता देना, अंदर किचन में बना देंगे। ये तो बाहर से कुक आए हैं, वो बना रहे हैं, दादाजी ने उससे कहा। नहीं, ठीक है, वंश ने कहा। इतनी देर में रवनीत एक ट्रे लेकर वंश के पास आया। आपकी ब्लैक कॉफ़ी, रवनीत ने कहा। रवनीत गीत से बातें करने लगा। आप दोनों की बहुत बनती है, वंश ने कहा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों बहन भाई साथ हैं। रवनीत बड़ा है मगर चलती इस पर गीत की है, दादाजी ने हंसकर कहा। अपने सिर पर चढ़ा रखा है इसे, इसीलिए मुझे छोटा बना देती है। वह उसकी प्लेट में से पराठा तोड़कर खा रहा था। जिस स्कूल में गीत पढ़ती थी वो हमारे पंजाब का माना हुआ स्कूल है। हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे। रवनीत को हमने पटियाला पढ़ने लगाया। जबकि गुरजीत पटियाला में रहता था तो हमने रवनीत को इन्हीं के पास छोड़ा था। और फिर प्लस टू के बाद जब गीत ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन ली तो गीत हमारे पास चंडीगढ़ रहने आ गई। तो दोनों भाई बहन फिर भी साथ थे, दादाजी बताने लगे। आप लोग जहाँ नहीं रहते, वंश ने कहा। नहीं बेटा, हम तो बहुत सालों से चंडीगढ़ रहते हैं। गीत के दादाजी और मैं, हम दोनों गाँव छोड़कर वहाँ चले गए थे। गीत के दादाजी, वंश ने पूछा। गीत ने आपके इशारे से दादाजी को मना कर दिया। वंश समझ गया था मगर उसने पूछना सही नहीं समझा। मेरे दो बेटे तो मेरे पास चंडीगढ़ में ही रहते हैं, तीसरा बाहर चला गया था। जो अंग्रेजों जैसे दिखाई दे रहे हैं ये उसी की फैमिली है, दादाजी ने हंसकर कहा। उसने वहाँ पर एक अंग्रेजी लड़की से शादी की थी। आपको तब कोई एतराज नहीं हुआ, अब उसे पसंद थी तो मुझे क्या कहना था, दादाजी ने कहा। हमारे खानदान में तो इंटरकास्ट मैरिज का रिवाज है। देखो, पहले चाचा जी ने इंटरकास्ट शादी की अंग्रेजन चाची से, रवनीत ने कहा। फिर गुरजीत चाचा जी ने की बंगालन चाची के साथ और गीत की शादी हुई आपसे। रवनीत की बातें सुनकर गीत ने रवनीत की तरफ आंखें निकाल कर देखा। वैसे मैं देख रहा हूँ रवनीत, तुझसे तुम्हारी बहन प्यार से तो बात करती नहीं, बात बात पर आंखें निकालती है, वंश ने जानबूझकर नवनीत से कहा। अब मुझे तो आदत पड़ चुकी है बचपन से। वैसे आपके साथ इसका बिहेवियर कैसा है? मैंने फोन पर कितनी बार कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, इसने बात भी नहीं करवाई और कहा मिलने आने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लगा आपसे नाराज है। क्यों, वंश ने पूछा। इसकी नाराजगी बहुत खतरनाक है, बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, जैसे वो सामने वाला है ही नहीं। मैं कभी इसे नाराज नहीं करता। मैं क्या, चाचा जी भी इसे कभी नाराज नहीं होने देते थे। अगर एक बार साइलेंट हो गई फिर सामने वाले को कितना इग्नोर मारती है, पता है मुझे, वंश ने मुस्कुराकर कहा। मतलब आपके साथ हो चुका है, रवनीत कहने लगा। अब आप लोग भी तैयार हो जाइए, उनके पास चाचा जी ने आकर कहा। हल्दी की रस्म होनी है। वैसे जीजू, आप क्या पहन रहे हैं? मैं सूट पहन रहा हूँ, वंश कहने लगा। अगर आपको एतराज ना हो तो आप पजामा कुर्ता पहनना पसंद करेंगे? हम सभी पजामा कुर्ता पहन रहे हैं, बिल्कुल नया है, मैं लेकर आऊँ। गीत उसे मना करने ही वाली थी कि वंश ने हाँ कह दिया। ले आओ, कोई बात नहीं, वह तैयार होने के लिए जाने लगे। गीत, जहाँ पर कोई औरत मंगलसूत्र नहीं पहनती और सिंदूर भी नहीं लगाती, वंश ने पूछ लिया। जट सिख फैमिलीज में मंगलसूत्र नहीं पहना जाता, सिंदूर, कई लोग सिंदूर लगा लेते हैं जरा सा, मगर कंपल्सरी नहीं है, गीत ने बताया। मतलब सुहाग की कोई निशानी नहीं? नहीं, गीत ने कहा। मुझे लगा तुम गुस्से में नहीं लगाती और ना ही मंगलसूत्र पहनती हो। सिंदूर तो मैं लगाती हूँ, गीत ने कहा। उसने बालों के नीचे हल्का सा सिंदूर लगाया हुआ था। उनकी रस्मों के बारे में जानकर वंश को हैरानी नहीं हो रही थी। वो लोग वापस कमरे में आ गए। तुम क्या पहन रही हो, वंश ने पूछा। आज हम सभी येलो कलर के सूट पहन रहे हैं, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, वंश के कहने पर गीत ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, वंश ने कहा। मैंने कहा तो भूल जाऊं उस बात को। नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जब हमारी शादी होने वाली थी, मैंने तुमसे जिस तरह का बिहेव किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ सीरियसली जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। उसने गीत का हाथ पकड़ लिया जो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। मैं भी आपके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, गीत ने कहा। तो फिर ठीक है, हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे को जाने समझें, ठीक है, गीत ने कहा। वंश ने आगे गीत के गाल पर किस कर लिया। उसकी हरकत से गीत को हैरानी हुई। मैं नहाने जा रहा हूँ, वंश ने स्माइल करते कहा। गीत वहीं खड़ी हुई उसकी हरकत के बारे में सोच रही थी। वंश बाथरूम के अंदर गया, फिर बाहर आ गया। गीत अभी भी उसी तरह खड़ी हुई थी। बीवी, अब मेरी इन हरकतों की आदत डालना शुरू कर लो, सोचता हुआ वंश बाथरूम के अंदर चला गया। फिर गीत को होश आया और मुस्कुराकर अपने कपड़े निकालने लगी।